जय धोला पुस्तक 15 लेक्चर नंबर 20 ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम नमः सिद्धेय ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंता नमो सिद्धानं नमो आयर्याणं नमो वच्छायानं नमो लोहे सौवसाम मुनिय परमत्थ विथर मुनिवर वीरे सिद्ध विजये जासंतु आभयवदी पश्यौ सुयदेवया मच्छं सुसुदेवयाय भक्ति सुदो वजो गोव भाव्यो संगम आवहैनान सिद्धिं नानफलं चाविनिर्वाणं तो सुदेवयमिनमो तिक्वत्तोपणमियोन भक्तिये गोच्छामि जलासुतम् चारित्रमोहसखवणविहीनम्। यह श्री वीरसेन आचार्य रचित जयधोला टीका है जो कषाय पाहुर तथा चूर्णीसूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुणधर भट्टारक तथा यतिशुभ आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 15वीं पुस्तक जो चारित्र मोक्ष अपना अपना अर्थाधिकार चल रहा है, उसमें भी हम पृष्ठ संख्या 155 पर आ गए। 155 अभी हमने कौन सी 7वीं शुरू की थी ना गाथा, 7वीं मूल गाथा 148 पृष्ठ पर उन्होंने बताई थी। देख लो पहले 148 पृष्ठ पर नीचे अर्थ किया उसका, अंतरकरण के बाद ये गाथा का अर्थ देख रहे हैं। नीचे से तीसरी लाइन, अंतरकरण के बाद उपरिम अवस्था में विद्यमान क्षपक के छह उंगलियों के भीतर बंधे हुए समय प्रबद्ध असंक्षुब्ध यानी अनुदीरित रहते, यानी छह उंगली तक अनुदीरित रहते वे समय प्रबद्ध चारों ही कषायों संबंधी सभी स्थिति भेदों में और सब अनुभागों में पाए जाते हैं। इस पर बहुत विस्तार से अपनी चर्चा भी हुई थी, क्योंकि जब प्रथम पुष्टि रूप से बनता है तो क्या क्या होता है, तो आवली तक तो बंदावली है तो पहले पुष्टि में रहेगा, एक आवली के बाद उदीर्णा तो नहीं होती है परंतु संक्रमण होता है, तो संक्रमण होगा तो संक्रमण किसमें होगा, क्रोध की द्वितीय संग्रह में, तृतीय संग्रह में और मान की प्रथम, यानी उसको द्वितीय अवली कहेंगे। तब वो कहाँ कहाँ है परमाणु, तो चार पुष्टियों में। तीसरी अवली में क्या होगा, क्योंकि अवली तक तो उसका संक्रमण दोबारा और नहीं होगा नीचे, अवली में पहली दूसरी और मान की पहली में हो गए हैं, वहां तक तो अवली तक रुकेंगे क्योंकि संक्रमण होने के बाद और फिर दोबारा संक्रमण होने के लिए एक अवली काल जाता। तो तीसरी अवली में क्या होगा, मान के द्वितीय तृतीय और माया का प्रथम, ये तीसरी अवली। चौथी अवली में माया के प्रथम द्वितीय और लोक की तृतीय, यानी 10 कृष्टि तक पहुंच गए, ये 9 और 1 10, और फिर लोक की द्वितीय तृतीय में चले जाएंगे। तो यहां हमने पढ़ा था 155 आए पान पर, 155 पर। अब यहाँ नीचे का सूत्र पढ़ेंगे, एवं तदिया आवलिया सत्तसु किट्टी सोत्ति भणई, इस प्रकार तीसरी आवली 7 संग्रह पृष्ठियों में कही जाती है। 7 कौन सी, क्रोध की 3, मान की 3 और माया की 1। इस क्रम से तीसरी आवली 7 संग्रह पृष्ठियों में पाई जाती है। यह उपरिम गाथा सूत्र के प्रथम पाद में कहा जाने वाला अर्थ सुसंबद्ध है यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब चौथी अवली में उस प्रदेश पुंज की प्रवृत्ति विशेष का अवधारण करने के लिए आगे के सूत्र का आरंभ करते हैं, क्योंकि संक्रमित होने पर वहाँ एक एक अवली काल तक रुकता है, बाद में आगे के पृष्ठों रूप से उसका संक्रमण होता है। अब हम 156 पृष्ठ पर आ गए हैं। पहले ऊपर का सूत्र पढ़ेंगे हम। जम कोह पदे शब्दम संक्षुब्ध माणयम मायाए पढ़म किट्टीय संपत्तम तम पदे शब्दम तत्तो आवलियादिकंतम मायाए विधिय तदियासु च किट्टीसु लोभस्य च पढ़म किट्टीय संकमदि। जो क्रोध संज्वलन का नवक बंध प्रदेश कुंज संक्रमित होकर माया संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में प्राप्त हुआ है, वह प्रदेश पुंज तत्पश्चात एक अवली प्रमाण काल जाकर माया संज्वलन की दूसरी और तीसरी संग्रह पुष्टियों में तथा लोभ संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में संक्रमित होता है। ये वही समय प्रबद्ध की बात है, उसमें से कुछ प्रदेश पुंज जो प्रथम पुष्टि रूप से क्रोध के बंधे थे अवली तक उसी में रहे, दूसरी अवली में क्रोध के द्वितीय तृतीय मान के पहले में गए, फिर वहां एक अवली रुके, उसमें से प्रदेश कुंज कुछ मान के द्वितीय तृतीय फिर माया के पहले में चले गए, फिर एक अवली रुके, फिर वो माया के प्रथम में से माया के द्वितीय तृतीय और लोक के प्रथम में आ गए। फिर दोबारा इसको पढ़ें। देखो, जो क्रोध संज्वलन का नवक बंध प्रदेश कुंज संक्रमित होकर माया संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में प्राप्त हुआ है, वह प्रदेश पुंज तत्पश्चात एक अवली प्रमाण काल जाकर माया संज्वलन की दूसरी और तीसरी संग्रह पुष्टियों में तथा लोभ संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में संक्रमित होता है। जो पूर्व में विवक्षित क्रोध संज्वलन न रही है, पूर्व में विवक्षित शब्द डाले ना, उस पर्टिकुलर प्रदेश पुंज की बात चल रही है। क्रोध संज्वलन का प्रदेश पुंज पूर्वोक्त प्रणाली से आकर, ये प्रणाली ने एक एक अवली एक एक को कैसे बीत गया वो हमने देखा, माया संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में संक्रांत हुआ है, संक्रांत यानी संक्रमित हुआ है, वह वही यानी वही पर तीसरी अवली प्रमाण काल तक रहकर पश्चात चौथी अवली के प्रथम समय में अनंतर कहे गए नियम का उल्लंघन किए बिना, क्या नियम बताया था, अपने नीचे तीन पृष्ठियों में जाता है, माया का प्रथम कहा जाएगा, माया के द्वितीय, माया के तृतीय और लोक के प्रथम, संक्रमण करता हुआ माया संज्वलन की दूसरी और तीसरी संग्रह पुष्टि में तथा लोभ संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में संक्रमण करता है, क्योंकि उससे आगे उस समय उसमें उस प्रकार की संक्रमण शक्ति का अभाव है। यानी अभी उसमें लोभ की द्वितीय रूप से संक्रमण करने का अभी अभाव है, उसमें अभी उतनी शक्ति नहीं है। इस प्रकार यह यहाँ पर सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। यतः ऐसा है, अतः चौथी अवली 10 संग्रह पृष्ठियों में पाई जाती है। ये 10 कौन सी पृष्ठ, क्रोध मान माया की तीन थी और लोक की एक। इस प्रकार इस बात का ज्ञान कराते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं, एवं चौथी आवलिया दससु किट्टी सुक्ति बनाई। इस प्रकार चौथी आवली 10 संग्रह पृष्ठियों में कही जाती है। यह सूत्र गतार्थ है। अब उसी नव प्रबंध, नव लिखा, नवक लिखते थे हमेशा, नव ही लिखा है क्या, और 423 जाना वन नवक प्रबंध चंद। एक्चुअली प्रबंध नहीं कहते, नवक बंध चाहिए। हाँ कब तस्य पदे शब्दस्य, वहां तो उसी प्रदेश पुंज के लिखा है, पर हम यहाँ लिखेंगे अब उसी नवक बंध प्रदेश पुंज के पांचवी आवली में प्रवृत्ति विशेष का ज्ञान कराने के लिए आगे के सूत्र का अवतार कहते हैं। पांचवी आवली में उसका क्या होता है, वही जो प्रदेश पुंज नीचे नीचे आ रहा है उसी की बात चल रही है। जम कोह पदे सद्गम संक्षुभ मानम लोभस्य पड़म किट्टी संपत्तम तदो आवलिया दिक्कंतम लोभस विदिय तदियासु किट्टीसु दिशई। जो क्रोध संज्वलन का नवक बंध, यहाँ लिखा है नवक बंध प्रदेश कुंज संक्रमित होकर लोभ संज्वलन की प्रथम पुष्टि को प्राप्त हुआ है, वह तत्पश्चात एक आवली काल के बीतने पर लोभ संज्वलन की दूसरी और तीसरी संग्रह पुष्टियों में दिखाई देता है। ये तो अभी आसान है ना, अभी नीचे तीन पर नीचे कहाँ है, कोई है नहीं। लोभ के तीसरे के नीचे क्या है, लोभ के पहले वाला कहाँ जाएगा, उसके आगे तो कोई अन्य कशा है नहीं और अनुपूर्वी संक्रमण चल रहा है, इसलिए दोबारा कहीं मान माया लोभ में क्रोध में आ जाए ऐसी बात नहीं है, तभी नीचे के दो में जाएगा। प्रणाली छोड़ी नहीं है उसने, परंतु नीचे अन्य कशा ही नहीं है। तो लोभ संज्वलन की दूसरी और तीसरी संग्रह पुष्टि में दिखाई देता है, अभी आगे पढ़ेंगे। जो वह क्रोध संज्वलन का नवक बंध प्रदेश पुंज पूर्व में विवक्षित किया था, ये बात महत्वपूर्ण क्योंकि हर समय तो संक्रमण तो चल ही रहा है, हम उस विशिष्ट प्रदेश पुंज की बात यहाँ कर रहे हैं। वह पूर्वोक्त परिवृद्धि के द्वारा लोभ संज्वलन की प्रथम संग्रह पुष्टि में संक्रमित हुआ है, वह वहाँ संक्रमणावली प्रमाण काल तक रहेगा। इसको संक्रमणावली कहते हैं, बंध के बाद आवली काल तक उसमें कुछ नहीं होता है परिवर्तन, उसको बंधावली कहा था। यहाँ संक्रमण के बाद फिर उसमें कुछ और अन्य प्रोसेस नहीं होता है, करण नहीं होते, तो उसको संक्रमणावली कहते हैं। तो संक्रमणावली प्रमाण काल तक रहकर पश्चात पांचवी आवली के प्रथम समय में लोभ संज्वलन की दूसरी और तीसरी संग्रह पुष्टियों में अपकर्षण के कारण संक्रमित होता है। अपकर्षण के कारण संक्रमित होता है का अर्थ क्या है, अनुभाग का घटना ही यहाँ संक्रमण, क्योंकि लोभ का लोभ में ही लय है। प्रथम संग्रह पुष्टि की द्वितीय संग्रह पुष्टि बनी यानी वो उसमें गए, उसका अर्थ क्या है, उतने प्रदेश पुंज का अनुभाग घट गया, द्वितीय तृतीय पुष्टि समान हुआ, तो अनुभाग का घटना यहाँ अपकर्षण कहेंगे और उसी को यहाँ संक्रमण कहा है। यहाँ लिखा है ना अपकर्षण के कारण संक्रमित होता है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। इस प्रकार संक्रमण होता है ऐसा करके पांचवी आवली का वह प्रदेश पुंज सभी संग्रह पुष्टियों में हो जाता है, यानी पांचवी आवली में वो सभी सर्वत्र 12 के 12 संग्रह पुष्टियों में आ गए, इस बात को कहते हैं। एवं पंचमी आवलिया सव्वासु किट्टी सुक्ति भन्नई, इस प्रकार पांचवी आवली सभी संग्रह पुष्टियों में कही जाती है, वो आवली कही जाती है ऐसा कहते हैं, परंतु वो विशिष्ट प्रदेश पुंज पांचवी आवली में जाकर वो सभी 12 संग्रह पुष्टियों में पाया जाता है। यह सूत्र गतार्थ है। इस प्रकार दूसरी भाष्य गाथा की विभाषा के अवसर पर ही तीसरी भाष्य गाथा की अर्थ विभाषा करके अब उसकी विभाषा के बिना केवल समुत्कीर्तना ही करनी चाहिए, इस प्रकार कथन करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। यानी ये दूसरी भाष्य गाथा का ये विभाषा हुई, इसी को तीसरी भाषा की भी विभाषा समझनी चाहिए, परंतु तीसरी भाषा भाष्यगाथा कही नहीं है उसको भी बताएंगे। यानी ये जो अभी विभाषा हुई है वो दूसरी के लिए भी समझना और तीसरी के लिए भी समझना। तो सूत्र में वही बताएंगे, तदीयाय भी भाषगाहाय अथो एथेव पुरुविदो नवरी समुक्कितना कायोगा। तीसरी भाषगाथा का अर्थ भी यहीं पर प्ररूपित कर दिया है, यानी अभी ऑलरेडी उन्होंने बता दिया है। इतनी विशेषता विनेशतम विशेषता वो शाह वाला शब्द, इतनी विशेषता है कि उसकी समुत्कीर्तना करनी चाहिए। विभाषा तो हो गई परंतु भी गाथा नहीं बताई है, तो अभी बताएंगे। तीसरी भाष्य गाथा की उच्चारणा करके उसके अर्थ की, दूसरी भाष्य गाथा के अर्थ की प्ररूपना के संबंध से विभाषा की, इसलिए उसकी समुत्कीर्तना ही इस समय करनी चाहिए। यह उक्त कथन का यह दो वर्ण तात्पर्य है। समझ में ये बात, यानी अभी केवल समुत्कीर्तना करेंगे, उसकी विभाषा नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी कर चुके हैं। तम जहा वह जैसे, यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ गाथा बताने वाले, तदिया सत्त सु किट्टी सु चौथी दस सु हो किट्टी सु तेन परम से साहो भवन्ति सौवा सु किट्टी सु। तीसरी आवली सात संग्रह कुष्टियों में, हमने पहली आवली तक तो प्रथम संग्रह कुष्टी में देखा था, दूसरी आवली में चार में देखा था, तीसरे में सात, चौथी में दस और पांचवी में सभी में, यही बता रहे हैं। तीसरी आवली सात संग्रह पुष्टियों में, चौथी आवली दस संग्रह पुष्टियों में और उससे आगे शेष आवलियां सब संग्रह पुष्टियों में पाई जाती है। शेष यानी जो छठी पांचवी पाई जाती है, तो जो छठी सातवीं आठवीं सभी तो पाए ही जाएंगे। इस प्रकार तीसरी भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना की अर्थ की विभाषा पहले ही कराए हैं, इसलिए उसकी पुनः प्ररूपणा नहीं करते, क्योंकि जिसका ज्ञान करा दिया है उसका पुनः ज्ञान कराने का कोई फल नहीं है। इतनी विशेषता है, तेन परम शेषा हो ऐसा कहने पर चौथी आवली के आगे शेष पांचवी छठी सातवीं आवलियां नियम से सब कृष्टियों में पाई जाती है, क्योंकि पांचवी आवली के प्रथम समय में ही शेष कृष्टियों में समय के अविरोध पूर्वक यानी यथा आगम क्या कहते हैं, पांचवी आवली के प्रथम समय में ही शेष कृष्टियों में समय के अविरोध पूर्वक संक्रांत हुए क्रोध संज्वलन के पूर्व विवक्षित प्रदेश पुंज का, ये पहले जो विशिष्ट प्रदेश पुंज का है उसका बारह ही संग्रह पुष्टियों में उस अवस्था में अवस्थान देखा जाता है। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, यानी पांचवी आवली में जाकर वो एक विशिष्ट समय में बंधा हुआ प्रदेश पुंज था, उसमें से कुछ यहाँ संक्रमित होते होते सभी कुष्टियों में आ गए पांचवी आवली में। इस प्रकार क्रोध संज्वलन के नवक बंध को अधिकृत करके यह सब मार्गणा दो भाष्य गाथाओं द्वारा की गई है। मानादि संज्वलनों के विषय में भी क्रम से यह अर्थ जान लेना चाहिए। इस प्रकार इस मार्गणा के लिए मार्गणा के किए जाने पर तीसरी भाष्य गाथा की विभाषा समाप्त होती है। हाँ, पहले पृष्ठ जो बंदी है वो नीचे जाते जाते सभी पृष्ठियों में जाते जाते उसको नीचे के किस अपने नीचे तीन में जाएगा, पहले से दूसरी का केवल तीसरी और चौथे नीचे के पहले में जाएगा। यहाँ वो विशिष्ट प्रदेश पुंज उन्होंने विवक्षित किया, नीचे का चल रहा है कहाँ कहाँ जाता है, पहले का जो द्रव्य है वो दूसरी तीसरी और मान की पहले में, क्रोध की द्वितीय का कहाँ जाएगा, क्रोध की तृतीय में और मान की पहली में, और क्रोध की तृतीय का कहाँ जाएगा, मात्र मान की पहली में। वो बात यहाँ नहीं उठाई, उन्होंने उस एक विशिष्ट समय प्रबद्ध नवक बंधे की बात उठाई। कि सभी कृष्टियों में आने तक उसको पांच अवली का काल लगता है, पांचवी अवली में वो सभी कृष्टियों में पाया जाता है। अब कहते ये हो गया ना पूरा, विवक्षित प्रदेश पुंज का वो हो गया, सब हो गया। देखो इस प्रकार यहाँ से पढ़ते पांचवी लाइन में, इस प्रकार क्रोध संयोजन के नवक बंधक को अधिकृत करके यह मार्गणा दो भाष्य गाथाओं द्वारा की गई है। तो पढ़ा था हमने मानादि संयोजन के विषयों में भी क्रम से यह अर्थ जान लेना चाहिए। इस प्रकार इस मार्गणा के किए जाने पर तीसरी भाष्य गाथा की विभाषा समाप्त होती है। कहते एक तो चौथी भाष्यगाथा है समुत्कीर्तना, इससे आगे चौथी भाष्य गाथा की समुत्कीर्तना करते हैं। सातवीं मूल गाथा के ऊपर ये भाष्य गाथाएं चल रही है, यह सूत्र सुगम है। अब यहाँ गाथा बताएंगे। ए दे समय पबद्धा अच्छुत्ताणी अमसा इह भवम् मे शेषा भवबद्धा खलु संचुद्धा होंति बोधव्वा। ये अनंतर कहे गए समय प्रबद्ध इस भव में इस क्षपक के नियम से असंक्षुब्ध रहते हैं, किंतु शेष भवबद्ध समय प्रबद्ध इस क्षपक के नियम से संक्षुब्ध जाननी चाहिए। असंक्षुब्ध का अर्थ क्या किया था हमने, अनुदीरित किया था ना, क्या कहा था अनुदीरित। हाँ, और ये बाकी जो सम अन्यत्र बंधे हुए जो है वो तो नियम से संशोधन सभी जगह पाए जाए। यह चौथी भाष्य गाथा प्रथम भाष्य गाथा में निर्दिष्ट किए गए अर्थ का ही पुनरपि विशेष रूप से कथन करने के लिए अवतीर्ण हुई है। देखो पहले गाथा निकलो भाष्य गाथा, वहां यही बात बताई कि एक सौ पचास पर जहां जाकर अंतरकरण किया को नीचे से ये 408 नंबर का पॉइंट कि जहां जाकर अंतरकरण क्रिया को संपन्न किया है वहां से लेकर बद्ध समय प्रबद्ध छह अवली काल प्रमाण जाने पर उदीरित होता है, छह अवली तक नहीं होता। अभी नीचे से इसी प्रश्न पर नीचे से तीसरी लाइन, इस प्रकार इस नियम के हो जाने पर इस कारण छह अवली संबंधी समय प्रबद्ध संक्षुब्ध स्वरूप होकर इस स्थान पर प्राप्त होते, यानी अभी वो संक्षुब्ध हुए, अभी तक असंक्षुब्ध थे, अब सभी संक्षुब्ध हो गए। इसका अर्थ यहाँ लिखा है 152 पृष्ठ पर विशेषार्थ में। विशेषार्थ में लिखते हैं ना, यहाँ पर उदय और संक्षुद्ध का अर्थ उदीर्णा स्वरूप नहीं होते तथा उदय संक्षुद्ध का अर्थ उदीर्ण रूप होते, ये बात वहां से सिद्ध होती, वही बात अभी यहाँ उन्होंने बताई है। कि छह अवली काल तक तो वो तो असंशुद्ध रहते हैं, परंतु जो शेष है ने अभी ये जो नवक बंध है छह अवली तक असंशुद्ध है, बाकी जो बंधे हुए हैं इससे पूर्व में वो संक्षुब्ध है, सर्वत्र पाए जाते हैं, उदय में भी और अन्यत्र भी सर्वत्र पाए जाएंगे। अब हम इसको पढ़ेंगे 158 पृष्ठ पर, हम नीचे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। यह चौथी भाष्य गाथा प्रथम भाष्य गाथा में निर्दिष्ट किए गए अर्थ का ही पुनरपि विशेष रूप से कथन करने के लिए अवतीर्ण हुई है। अब इस गाथा के किंचित अवयवार्थ का परामर्श करेंगे। अभी इसी गाथा में वह जैसे एदे समय पबद्धा, एदे यानी ये जिसकी बात अभी अभी हो चुकी है, ये अनंतर कहे गए छह आवलियों के समय प्रबद्ध। किन समय प्रबद्धों की बात चल रही है? अभी अभी जो छह आवलियों के समय प्रबद्ध है जिसको हम नवबंध कहा था उसकी बात है। वो अच्युतता उदय स्थिति में असंक्षुब्ध रहते हैं। अनुदीरित रहते हैं, असंक्षुब्ध रहते हैं, अनुदीरित रहते हैं, उदय स्थिति तक नहीं आते। यह भव में, इस वर्तमान भव ग्रहण में शेष भव बद्धा खलु, इस भव ग्रहण को छोड़कर शेष समस्त कर्म स्थिति के भीतर भव ग्रहण स्थिति में बंधे हुए सभी समय प्रबद्ध उदय में संक्षुब्ध होते ऐसा जानना चाहिए। क्या कहते हैं? दो बातें बताएं। इस भव में किसको छोड़कर? अभी हमने देखा ना छह आवली में जो बंधे थे उसको छोड़ो, तो उसके पहले इस भव में बंधे हुए
या इसके पहले अनेक भव में बंधे हुए
सारे समय प्रबद्ध सभी स्थितियों में पाए जाते। फिर पढ़ते इसको, दो बातें बताई। यह भव में यानी वर्तमान भव ग्रहण में, और शेष भव बद्धा खलु यानी इस भव ग्रहण को छोड़कर शेष समस्त, कितने भव लेना? तो कर्म स्थिति के काल में जितने भव हुए थे, कर्म स्थिति प्रमाण काल तक जितने भव उसने बिताए हैं, उतने भव में ग्रहण किए हुए भव ग्रहण स्थिति में बंधे हुए ने, जितने भव ग्रहण हुए उसके प्रत्येक समय में बंधे हुए सभी समय प्रबद्ध उदय में संक्षुब्ध होते हैं ऐसा जानना चाहिए। सभी समय प्रबद्ध संक्षुब्ध होते का अर्थ क्या है? हमने देखा था उदय में आते हैं तो सभी समय प्रबद्धों में से कुछ कुछ परमाणु वहां उदय में पाए जाएंगे। देखेंगे क्योंकि नीचे से दूसरी लाइन, उनके असंक्षुब्ध रूप से अवस्थान का कोई कारण नहीं उपलब्ध होता। पहले जो नवबंध में देखा था उसमें तो कारण था, पांच आवली और छठी आवली में छह आवली तक की बात थी। बाकी जो इसके पहले जो बंधे हुए थे कितने काल में? कर्म स्थिति प्रमाण काल में, उसमें यह भव भी आया, इसके पूर्व भव भी आ गए। तो कहते वो संक्षुब्ध रूप से रहते हैं, वो पाए जाते हैं उदय में भी, सर्व समय प्रबद्धों के परमाणु पाए जाते हैं। इसलिए समय प्रबद्ध की विवक्षा में ये संक्षुब्ध और असंक्षुब्ध रूप से इस क्षपक के पाए जाते हैं। असंक्षुब्ध ने अनुदीरित, कौन से है? वो छह आवली के नवबंध। बाकी इस भव के और पूर्व अनेक भवों के जो समय प्रबद्ध है वो कैसे है? संक्षुब्ध है, सर्वत्र पाए जाते हैं। परंतु भवबद्ध समीप सभी समय प्रबद्ध इस क्षपक के नियम से संक्षुब्ध जाननी चाहिए। यानी समय प्रबद्ध की विवक्षा करेंगे मात्र समय प्रबद्ध की, तो उसमें संक्षुब्ध है और असंक्षुब्ध भी है। क्योंकि जब समय प्रबद्ध की बात करेंगे तो छह आवलियों का नियम, यानी कुछ ऐसे समय प्रबद्ध है कि जो अनुदीरित है, परंतु भव की बात करेंगे, इस भव की और पूर्व भव की। तो भव की बात तो हम जन्म से तो इस वो क्षपक जी उस भव में, मनुष्य भव में है तो उस भव में तो बांधा ही है उसने, और अनेक असंख्यात पूर्व भव में भी बांधा है।
Mm-hmm.
उनमें अन्य प्रकार संभव नहीं, यह इसका भावार्थ है। क्यों भव जब कहे थे तो भव तो गर्भ में आया तब से भव शुरू हुआ था, तो उस भव में बंधे हुए भी है और पूर्व भव में भी बंधे हुए। परंतु एक एक समय प्रबद्ध की बात करेंगे तो कुछ समय प्रबद्ध ऐसे है, कुछ में किसको लेना, वो नवक बंध वालों कि जो नहीं, नवक बंध तो अभी अभी हुआ छह अवली का, वर्तमान भव तो गर्भ में आया तब से था। देखो कहाँ लिखा है, नीचे से तीसरी लाइन, पहले दो बातें बोल गई, पहले क्या लिखा, यह भव में, इस भव में एक बात, यानी इस भव में ग्रहण किए और इसके पहले वाले भव में ग्रहण किए। पहले वालों के लिए क्या लिखा, इस भव को छोड़कर अन्य शेष भवों में ग्रहण किए हुए, ऐसा लेना। यानी अभी वर्तमान मनुष्य का भव छोड़ो, इसके भव हमने पहले कितने बिताए हैं, उनके एक इंद्रिय के ही असंख्यात बिताए, और फिर देवों के कुछ बिताए हो गए या नहीं हो गए, नारकियों के बिताए नहीं हो गए नहीं हो गए, अन्य मनुष्यों के भी, यानी त्रस पर्याय लंबे काल तक चली होगी तो त्रस के कुछ भव, और एक इंद्रियों के तो असंख्यात होते ही होते हैं, इन भवो ग्रहण में, तो उनको बताने के लिए शेष, यानी क्या किससे शेष, वर्तमान का छोड़कर बाकी उसको कहा शेष, वर्तमान के लिए तो वर्तमान भव कह दिया और उसके बिना जो पहले वाले सारे थे उसको शेष में डाल दिया, इसलिए छोड़कर की बात लिखी। ये दोनों बातें क्लियर हुई, जब भव ग्रहण कर दे तो इस भव में धारण किए तो है ही वहां पर, और समय प्रबद्धों की बात की तो नवक बंध को छोड़कर बाकी सब है। अब ये नया सूत्र यहाँ पर नहीं, ये कुछ दो ही लाइन होगी ना, और इस प्रकार के सेकंड लाइन, इस गाथा के इस अर्थ की प्रथम भाष्य गाथा की विभाषा के समय ही विभाषा कर आए हैं, इसलिए पुनः विभाषा नहीं करनी चाहिए, इस प्रकार प्ररूपणा करते हुए आगे के सूत्र को कहते हैं। पहले भी भव की बात और समय प्रबद्धि की थी, अब यहाँ और थोड़ा विशेष बताया। एदिस्से गाहाए अथो परम भास गाहाए चेव परुविदो, इस गाथा सूत्र का अर्थ प्रथम भाष्य गाथा में ही प्ररूपित कराए, क्योंकि उस गाथा सूत्र में समय प्रबद्धों के संक्षुब्ध और असंक्षुब्ध भाव की गवेषणा के समय ही, गवेषणा यानी उसको खोजना है, उसको बताना है, बहुबद्ध समय प्रबद्धों की प्ररूपणा का भी विस्तार के साथ अनुमार्गण कराए। इस प्रकार सातवीं मूल गाथा की अर्थविभाषा समाप्त हुई। सातवीं मूल गाथा में यही बात हुई कि इस भव में बंधे हुए और शेष भव में बंधे हुए, और समय प्रबद्धों में, समय प्रबद्ध तो एक एक समय में बंधा हुआ है, तो एक एक समय प्रबद्ध करके कितना, जितना काल कर्म स्थिति प्रमाण काल में बंधे हुए वो सब को हम कहेंगे समय प्रबद्ध, एक एक समय में एक एक समय प्रबद्ध, तो कर्म स्थिति प्रमाण काल में बंधे हुए समस्त समय प्रबद्धों को यहाँ ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ कहते हैं आठवीं मूल गाथा बताएंगे, अभी 159 पेज पर, एतो अठमीये मूल गाहाए समुक्कीर्तना, इससे आगे आठवीं मूल गाथा की समुक्कीर्तना करते हैं। सातवीं मूल गाथा की विभाषा करने के बाद आगे आठवीं मूल गाथा की यथावसर प्राप्त समुक्कीर्तना करनी चाहिए, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। अब यहाँ पढ़ेंगे हम 146 नंबर की। एक समय प्रबद्धानं शेषानि च कदि सुठिति विशेषेषु भवशेषगानि कदि सुच कदि कदि वा एक समयेन, कितने एक और नाना समय प्रबद्ध, यानी एक समय प्रबद्ध और नाना समय प्रबद्ध, दो बातें बताएं, कितने एक और नाना समय प्रबद्ध शेष, नाना समय प्रबद्ध शेष, यानी एक समय प्रबद्ध और शेष समय प्रबुद्ध ऐसा लेना है। तो शेष में नाना लिख दिया, एक समय में बंधे हुए वो एक समय प्रबुद्ध, और बाकी समयों में बंधे है वो नाना समय प्रबुद्ध, शेष कहा उसको, शेष नाना समय प्रबुद्ध। तथा नाना भवबद्ध शेष, यानी एक भवबद्ध को छोड़कर नाना भवबद्ध शेष, कितने स्थिति विशेषों और अनुभाग विशेषों में पाए जाते हैं। इस प्रकार एक और नाना कितने समय प्रबद्ध शेष और भवबद्ध शेष एक स्थिति विशेष में पाए जाते हैं, इसका अर्थ खुलासा करेंगे। और तथा एक समय संबंधी एक स्थिति विशेष में नाना और एक कितने समय प्रबुद्ध शेष और भवबद्ध शेष पाए जाते हैं। अब यहाँ शेष शेष शब्द डाला उन्होंने, यह आठवीं मूल गाथा अंतरकरण से उपरिम अवस्था में विद्यमान क्षपक के कितने समय प्रबुद्ध शेष और भवबद्ध शेष, ये समय प्रबुद्ध शेष एक शब्द लिया उन्होंने, अभी उसका अर्थ करेंगे, ईशा कितने स्थिति विशेषों में संभव है, इस प्रकार के अर्थ विशेष का निर्णय करने के लिए अवतीर्ण हुई। अब इसके अर्थ की प्ररूपणा करेंगे, अभी हम भी देखेंगे इसको। वह जैसे एक समय पबद्धान में ऐसा कहने पर एक समय में जितने कर्म परमाणु बनते हैं उनकी एक समय प्रबद्ध संज्ञा है, ये तो हमें मालूम है। परंतु वह समुदाय की विवक्षा में एक होता हुआ भी अपने अवयव रूप कर्म प्रदेशों की भेद विवक्षा में, यानी कितने कर्म परमाणु बांधे उसकी अपेक्षा लगाएंगे तो बहुत्व को प्राप्त हो जाता है। एक समय प्रबद्ध को भी बहुवचन क्यों कहा, क्योंकि वहां कर्म प्रदेशों को लक्ष्य करके वो बात कही, इसलिए उक्त पद में बहुवचन का निर्देश किया। कितने एक समय प्रबद्ध पूछा था ना, तो समय प्रबद्ध तो एक समय प्रबद्ध तो एक होता है, उसको कितने शब्द क्यों लाना है, उसका ये व्याकरण की दृष्टि से उसका अर्थ बताना। अथवा नाना समय प्रबद्धों के एक एक समय प्रबद्ध की आवृत्ति की अपेक्षा उसका बहुतपना संभव होने से सूत्र में बहुवचन रूप निर्देश किया है, यानी एक एक समय प्रबद्ध ऐसा गिनेंगे तो नाना यानी अनेक समय प्रबद्धों में, अनेक समयों में बंधे हुए एक एक समय प्रबद्ध यानी जो बहुवचन गया, उनके शेषाणी ऐसा कहने पर कर्मस्थिति प्रमाण काल के भीतर वेदे जाने के बाद जो शेष बचे हैं, और जो तदनंतर समय में केवल निर्लेपित भाव को प्राप्त होने वाले हैं, उनका ग्रहण करना चाहिए। इन्हें वर्तमान समय छोड़कर बाकी ना किसको लेना, आगे के समय में उदय आने वाले। देखो फिर से शेष किसको कहा, कर्म स्थिति प्रमाण काल के भीतर वेदे जाने के बाद जो शेष बचे हैं, यानी उदय को जो उदय रूप आए हैं उसको छोड़कर बाकी शेष, और जो तदनंतर समय में केवल निर्लेपित भाव को प्राप्त होने वाले, यानी आगामी समय में मात्र उदय को प्राप्त हो, यानी वो तो छूट जाने वाले, उनका ग्रहण करना चाहिए। इसलिए एक समय प्रबद्ध के अथवा नाना समय प्रबद्धों के कदी अर्थात कितने शेष रहते हैं, वे कदी सुठिदि विशेष अर्थात कितने स्थिति संबंधी भेदों में संभव है, यह इस सूत्र गाथा के पूर्वार्ध में अर्थ के साथ संबंध है। यहाँ गाथा के उत्तरार्ध में स्थित कति शब्द का संबंध कर लेना चाहिए, यानी कितने हैं ये पूछा था ना। तथा इस गाथा में जो च शब्द आया है वह अनुक्त अर्थ का समुच्चय करने वाला होने से उस द्वारा अनुभाग विषय पृच्छा सूचित की गई जाननी चाहिए। कितने स्थिति विशेषो यानी कितने निषेकों में होते हैं और कितने अनुभागों में होते हैं, ये प्रश्न पूछा गया है। इसलिए कर्म स्थिति काल के भीतर जो नाना समय प्रबद्ध और एक समय प्रबद्ध बंध को प्राप्त हुए हैं, अनेक वचन डाला ना, तत्संबंधी वेदे जाने से शेष बचे कर्म परमाणु तदनंतर समय में निरशेष रूप से निर्लेपन भाव को प्राप्त होते हुए कितने स्थिति विशेषों में और कितने अनुभाग विशेषों में कितने कर्म परमाणु जघन्य और उत्कृष्ट रूप से संभव है, यह गाथा के पूर्वार्ध में सूत्र का समुच्चय रूप अर्थ है। यानी एक समय में अभी वो निकल जाने वाले ऐसे कितने परमाणु शेष बचे हैं ऐसा पूछते हैं। पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा। भवसे से यानी च कदिसु ऐसा कहने पर एक भव ग्रहण में जितने कर्म प्रदेश पिंड का संचय किया है उसकी भवबद्ध संज्ञा है और उसका भी पहले के समान नाना भवबद्ध और एक भवबद्ध कर्म पुंज का संग्रह करने के लिए बहुवचन रूप से निर्देश किया है, एक भव में बंधे हुए और अनेक भवों में बंधे हुए। इसलिए नाना भवबद्ध और एक भवबद्ध कर्म पुंज के वेदे जाने के बाद जो कर्म प्रदेश शेष बचे वे तदनंतर समय में पूरी तरह से निर्लेपन भाव को प्राप्त होते हुए कितने स्थिति बराबर करना, कितने स्थिति विशेषों में और चौपद से कितने अनुभाग विशेषों में होते हैं, यही इस गाथा के उत्तरार्ध का समुच्चय रूप अर्थ है। अभी अभी भी ये ख्याल नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि बाकी तो वो निकल गए हैं, यानी वेदे जाने के बाद यानी उदय रूप होकर निकल गए और अभी वर्तमान में वो निर्लेपित हो जा यानी एक समय में निर्लेपित होकर नष्ट होने वाले, तो वो कितने स्थितियों में पड़े हैं ये पूछ रहे हैं। हाँ स्थिति में और कितने अनुभव हैं। अभी आगे बढ़ेंगे। इसका जब जवाब आएगा तो इसकी क्लैरिटी होगी, अभी तो प्रश्न ही प्रश्न हम देख रहे हैं। कदी कदी वा एक समयेण, यह इस गाथा सूत्र का अंतिम चरण है। उसमें जो एक कति शब्द आया है उसका समय प्रबद्ध शेष और भवबद्ध शेष के विशेषण रूप से पहले ही संबंध सूचित कराए, यानी कितने कितने एक कितने हैं तो ऊपर की लाइन के लिए है और एक कितना जो शब्द है वो इस लाइन के लिए है। कदी कति दो ही लिखते हैं, एक शब्द आया तो पूर्व के लिए तीसरी लाइन। अब कदिवा एक समय न इस पद का अर्थ कहते हैं वह जैसे एक निषेक संबंधी स्थिति को आधार करके उसमें कितने नाना समय प्रबद्ध शेष और एक समय प्रबद्ध शेष प्राप्त होते हैं, यानी नाना समयों में बंधे हुए कितने प्रदेश पुंज है, और एक समय में जो एक समय प्रबद्ध के कितने प्रदेश है। एक विशिष्ट निषेक संबंधी ये पूछ रहे हैं, इस प्रकार कितने नाना भवबद्ध शेष और एक भवबद्ध शेष प्राप्त होते हैं, इस अर्थ विशेष का निर्णय करने के लिए यह वचन कहा गया है। क्योंकि एक समय वाले एक गोपुच्छ में विद्यमान, ये सत्ता का गोपुच्छ है, गोपुच्छ है ना एक निषेक, एक समय वाले एक निषेक में पाए जाने वाले तथा समय प्रबद्धों के वेदे जाने से शेष बचे कर्म परमाणु कितने प्राप्त होते हैं, एक निषेक में कितने कर्म परमाणु एक एक समय में बंधे हुए, उसके बाद इस प्रकार सूत्रार्थ के संबंधवश वहां उस प्रकार का अर्थ स्पष्ट रूप से उपलब्ध होता है। इस चरण में आया हुआ वा शब्द अनुक्त अर्थ का समुच्चय करता हुआ तीन पृच्छाओं संबंधी प्रकृत में उपयोगी समस्त विशेषों की प्ररूपणा के सूचक रूप से उसका अवस्थान स्वीकार किया गया। इस प्रकार इस मूल गाथा में तीन पृच्छाएं निर्दिष्ट की गए हैं, वो जैसे अभी इसको फिर दोबारा बताएं। नाना और एक समय प्रबद्धों के शेष कितने स्थिति विशेषों में कितने होते, यानी नाना समय प्रबद्धों के शेष और एक समय प्रबद्धों के शेष, शेष किसको कहा, जो वेदे जाने वाले उनको छोड़ा और ये इस नेक्स्ट समय में निर्लेपित होने वाले उसको छोड़ा, यानी अभी तक तो जो उदय में आकर निकल गए उसको तो निकाल, उसको की बात नहीं है, वो तो है ही नहीं सकता। अब इस समय जो निर्लेपित होने वाले है उसकी भी बात है, तो बाकी जो शेष बचे हैं वो कितने स्थितियों में पड़े हैं, ये प्रश्न या पूछो ना। नाना और एक समय प्रबद्धों के शेष, उनके शेष ऐसा अलग अलग है, कितने स्थिति विशेषों में होते हैं और कितने होते हैं, दो प्रश्न पूछे, कितने निषेकों में होते हैं और कितनी संख्या में होते हैं, ये पहला प्रश्न है, प्रथम पृच्छा निर्देश है। नाना समय प्रबद्ध शेष और एक समय प्रबद्ध शेष कितने स्थितियों में कितने निषेकों में होते हैं और कितने होते हैं, ये पूरा एक प्रश्न हो। अब दूसरा प्रश्न क्या है, नाना भवो और एक भव में बद्ध, यानी नाना भवो में बद्ध और एक भव में बद्ध कर्मों के शेष कितने स्थिति विशेषों में कितने होते हैं, यह दूसरा पूछा निर्देश। पहले समय प्रबद्धों की अपेक्षा एक एक समय में बंधा हुआ वो एक समय प्रबद्ध, ऐसे नाना समय प्रबद्ध, और फिर भव की बात है, एक भव में अनेक भव में। अब तीसरा प्रश्न क्या पूछ रहे, कदिवा एक समय न, इस अंतिम चरण में एक स्थिति विशेष में विद्यमान नाना और एक भव बद्ध और समय प्रबद्धों के शेष कितने होते हैं। पहले पूछा था नाना और एक समय प्रबद्ध के जो शेष है वो कितने स्थिति विशेषों में हो गए, वैसे वो भवों के बारे में बताया, एक भव में बद्ध और नाना भव में बद्ध जो शेष है, शेष की बात है, वो कितने स्थितियों में और कितने प्रमाण में होंगे। तीसरा प्रश्न उल्टा बता रहे हैं कि एक स्थिति विशेष में, एक स्थिति विशेष में वो तो कितने स्थितियों में पूछा था, अब एक स्थिति में एक निषेक में विद्यमान यानी पाए जाने वाले नाना और एक भव बद्ध और समय प्रबद्ध भी उसमें भी नाना और एक कहना, शेष आगे लगाना, यानी नाना भवबद्ध शेष, एक भवबद्ध शेष, नाना समय प्रबद्ध शेष, एक समय प्रबद्ध शेष, किसके बाद चल रही, एक स्थिति विशेष में कितने हो गए, यह तीसरा पृच्छा निषेध है। तथा इसी गाथा सूत्र में आए हुए एक समय न, इस अंतिम चरण द्वारा समय प्रबद्ध शेष और भवबद्ध शेष का, शेष के लक्षण का निर्देश सूचित किया है, उसके लक्षण बताया। लास्ट में लिखा था ना, एक समय ऐसा कुछ लिखा होगा, कभी कभी वहां एक समय ना। वही अभी ये जो पूछ रहे लास्ट वाला जो तीसरा जो थे, तो उस एक समय द्वारा उसका लक्षण बता रहे। देखो, एक समय द्वारा जिसका वेदन करने के बाद शेष बचे हुए प्रदेश कुंड पिंड को पूरा आकर्षित करके उदय में निक्षिप्त करने पर पुनः विवक्षित समय प्रबद्ध का या भवबद्ध का किंचित मात्र प्रदेश कुंज अवशिष्ट नहीं रहता, उस प्रकार का प्रदेश कुंज तदनंतर समय में निर्लेपन होने निर्लेपन के योग्य होकर इस समय उपलब्ध्यमान समय प्रबद्ध शेष और भवबद्ध शेष कहलाता है, ऐसा जाना चाहिए। फिर देखते हैं इसको, ये भव निर्लेपित होने वाला है अगले समय में, उसका अर्थ क्या है, अभी कहाँ पड़ा है उसको शेष कहा। हाँ, सत्ता में कहाँ पड़ा है, उदय के समय में पड़ा है कि कहाँ पड़ा है, नेक्स्ट समय में उदय में आने वाला। सत्ता में कहाँ पर है, वही तो पूछ रहे हैं। ये सब यहाँ पर है कि नहीं है ये पूछ रहे हैं। ये तो उदय हो चुका उसकी बात नहीं, अभी जो उदय होने वाला है उसकी बात है, ये तो अभी वेद जा रहा है। देखो, ये तो अभी वेद रहा है इसको, इसकी बात नहीं है, शेष की बात, वेदे जाने वाले की बात नहीं, शेष की बात है। परंतु जो अगले समय में निर्लेपित होने वाला है, यानी क्या, ये खिर जाएगा और नेक्स्ट समय में इसमें से सारे यहाँ उदीरित होकर उसका उदय होगा। वो अभी कहाँ पड़े हैं ये पूछा है, अपकर्षण होकर वो उदय के साथ जुड़कर वो उदय में आने वाले हैं, निर्लेपित होने वाले हैं, वो कहाँ कहाँ से आएंगे नीचे उसकी बात पूछ रहे हैं, वही पूछ रहे हैं। अभी उदयावली में से तो अपकर्षण या उदीर्ण नहीं होगी, उदयावली के अंदर जो है, अभी यहाँ क्या कहते देखेंगे भी हम, इसको मैं फिर पढ़ती हूँ नीचे से चौथी लाइन ना। एक समय द्वारा जिसका वेदन करने के बाद, यानी अभी वर्तमान समय इसका वेदन करने के बाद शेष बचे हुए प्रदेश पिंड को, अभी जितना प्रदेश पिंड है उसको पूरा आकर्षित करके उदय में निक्षिप्त करने पर पुनः विवक्षित समय प्रबद्ध का, शेष बचे नहीं, सत्ता में बचे नहीं, विवक्षित समय प्रबद्ध के शेष बचे, किसी विशिष्ट समय में बंधे थे समय प्रबद्ध, अभी तक तो सारे उदय आकर फिर गए, अभी सभी निषेकों में पड़े हैं, परंतु नेक्स्ट समय में उस सबका आकर्षण होकर उदय में आकर फिर जाने वाले। तो कहते हैं विवक्षित की बात की ना, यानी एक समय में उसका वेदन करेंगे उदय में आएंगे, और जो बचे हैं विशिष्ट समय प्रबद्ध के जो शेष परमाणु बचे हैं उनका आकर्षण करके उदय में निक्षिप्त करने पर, वो उदय में निक्षिप्त होगा और विवक्षित समय प्रबद्ध का या भवबद्ध का किंचित मात्र प्रदेश पुंज अवशिष्ट नहीं रहता, यानी अभी वो सारा ही उदय में आकर नष्ट होने वाला है, ये बात है। उस प्रकार का प्रदेश पुंज तदनंतर समय में निर्लेपन के योग्य होकर, तदनंतर समय में वो निर्लेपन होगा, यानी तदनंतर समय में क्या होगा, आकर्षण करके उदय में आएगा और निकल जाएगा, इस समय उपलब्ध्यमान समय प्रबद्ध शेष, अब इस समय उसको क्या कहेंगे, समय प्रबद्ध शेष और भवबद्ध शेष कहलाता है, यह ऐसा जानना चाहिए। क्योंकि इस प्रकार इस वाक्य का अध्याहार करके, ये अध्याहार करके ने क्या लक्षण दें, समझ कर अध्याहार, उसको गर्भित समझना, उसका एक्चुअली अध्याहार है ना, वो कंटिन्यूटी होती है, जैसे तत्काल सूत्र में बहुत सारे सूत्र है, तो पहले सूत्र की जो कुछ एक बात बताई है वो उसका अध्याय आगे के सूत्र में कहते हैं, यानी वो गर्भित है ऐसा जानते हैं। सूत्र के अर्थ का व्याख्यान करने पर, जैसे हम कहते हैं ना अंग्रेजी में, वी टेक इट एज ग्रांटेड, वो है ऐसा समझकर, ऐसा उसका अर्थ समझकर, सूत्र के अर्थ का व्याख्यान करने पर उस प्रकार के लक्षण का निर्देश भी इसी में प्रतिबद्ध देखा जाता है। जब ये ऐसा अर्थ ऐसा समझेंगे तो इसी सूत्र में वो अर्थ गर्भित है ये बात समझ में आती है। इस प्रकार इस मूल सूत्र गाथा में की गई पृच्छा सामान्य के द्वारा, ये तो इन जनरल पृच्छा की है, पृच्छा सामान्य के द्वारा सूचित किए गए इन तीन अर्थ विशेषों का व्याख्यान करते हुए, प्रश्न तो कहते पृच्छा सामान्य और फिर उसमें अर्थ विशेष निकलते, तीन अलग अलग अर्थ निकलते हैं, उनका व्याख्यान करते हुए उन अर्थों में प्रतिबद्ध भाष्य गाथाओं की संख्या का उदाहरण करने के लिए इस सूत्र को कहते हैं। यानी अभी ये कौन सी मूल गाथा है, आठ नंबर की, अब उसमें कितनी भाष्य गाथाएं आने वाली उसको यहाँ बताते हैं। एक तो 44 भाष्य गाथाओं, इस मूल गाथा के अर्थ में प्रवृत्त चार भाष्य गाथाएं हैं। इस मूल गाथा सूत्र के अर्थ की विभाषा करने में बीच में कुछ साइन आ गए ना, क्या कहते, इस मूल गाथा सूत्र के अर्थ की विभाषा करने में प्रवृत्त, प्रकृति में ये चार भाष्य गाथाएं हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य। ये जो चार भाष्य गाथाएं हैं वो मूल गाथा को समझाने वाली है, उसका अर्थ अधिक ख्याल में आता है। तासिम समुत्कीर्तना, अब उनकी समुत्कीर्तना करते हैं, यह सूत्र सुगम है, उसमें से एक एक गाथा बताएंगे अभी। एकम मिठिदि विशेषे भवशेष गसमय पबद्ध शेषाणी नियमानुभागे सुय भवन्ति शेषाणन्तेषु। एक स्थिति विशेष में भवबद्ध शेष और समय प्रबद्ध शेष नियम से होते हैं, तथा अनंत अनुभागों में भवबद्ध शेष और समय प्रबद्ध शेष नियम से होते हैं। यह प्रथम भाष्य गाथा तदिवा एक समय ने इस प्रकार मूल गाथा के अंतिम चरण का आश्रय करने के साथ एक स्थिति विशेष को आधार बनाकर उसमें भवबद्ध शेष और समय प्रबद्ध शेष इतने होते हैं, इसका ज्ञान कराने के लिए तथा उन्हीं के अनुभाग विशेष का उदाहरण करने के लिए आएंगे, तथा यानी एक स्थिति विशेष के ना एक निषेक का आश्रय लेकर एक निषेक में समय प्रबद्ध शेष और भवबद्ध शेष की बात करें, जो गाथा के अंत में पूछा गया था उसको यहाँ पहले भी पहले बता रहे, तथा भवबद्ध शेष और समय प्रबद्ध शेषों के लक्षण विशेष का निर्देश भी देशामर्शक रूप से यह गाथा सूचित करती है, क्योंकि सभी गाथा सूत्रों का देशामर्शक भाव से अवस्थान स्वीकार किया गया है। अब इस भाष्य गाथा के अवयवों की अर्थ प्ररूपणा करेंगे, वह जैसे, यानी एक स्थिति विशेष में कितने समय प्रबद्ध शेष और भवबद्ध शेष है, एक प्रश्न पूछा, एक 163 पृष्ठ पर आ गए हम। एकम निठिधि विशेष, एक स्थिति विशेष में अर्थात एक समय अधिक उदयावली से ऊपर, अन्यतर स्थिति विशेष में या उदय के बाद दूसरी स्थिति में उदयावली के ऊपर इसलिए पूछा कि वहां से वो अंतिम एक समय में सारा उदीर्ण होकर उदय में आएगी, या अभी जो वर्तमान उदय रूप है उसको छोड़कर उसके द्वितीय स्थिति में दोनों ही गएगी। भवबद्ध शेष और समय प्रबद्ध शेष कितने होते हैं उसकी बात है, क्योंकि अभी वो नेक्स्ट समय में पूरे खिर जाने वाले हैं, तो अभी वहां कितने हैं ये पूछ रहे हैं। अभी उसका अंतिम खिरने का समय आया है तो वहां पर ये कितने, वर्तमान समय की बात नहीं पूछ रहे, उसको तो उदय रूप में ले लिया था पहले ही। अब कहते अभी नेक्स्ट समय में जो उदय में आएंगे या अपकर्षण होकर उदय में आएंगे, इसलिए उदयावली के ऊपर का एक रखा या द्वितीय स्थिति वाला लिया। ख्याल में यही दो बातें, द्वितीय स्थिति द्वितीय निषेध की बात है, ये अंतर्भिंतर की बात नहीं है। उदयावली के ऊपर का निषेध लेना या उदय के समय से लेकर दूसरा निषेध लेना, अथवा कह के दो बातें बताए। पर उदयावली के ऊपर अन्यतर लिए नहीं, कोई भी स्थिति विशेष लिया, अन्यतर का अर्थ था कोई भी, एक ही नहीं लिया है। ये दो कौन सी बातें, अन्यतर उदयावली से ऊपर अन्यतर स्थिति विशेष में या उदय के बाद दूसरी स्थिति में भवबद्ध शेष और समय प्रबद्ध शेष कितने होते हैं, ऐसी पृच्छा करने पर भवबद्ध शेष और समय प्रबद्ध शेष बहुत होते हैं, इस प्रकार उनके प्रमाण का निर्देश किया है। क्योंकि भवशेष है समय प्रबद्ध शेषानी, इस प्रकार इस चरण में किए गए बहुवचन निर्देश से उनके बहुत संख्या युक्त प्रमाण का निर्देश बन जाता है। ये वहां पर अनेक वचन लिया है इसलिए ये सिद्ध होता है अनेक समय में बंधे हुए है। यहाँ यद्यपि इस प्रकार किए गए सामान्य निर्देश द्वारा उनके बहुत सामान्य का ही ज्ञान होता है, बहुत है इतना ही है, परंतु निश्चित कितने हैं वो समझ में नहीं आता है, इसलिए उसको बहुत भी सामान्य कह दिया, तो भी व्याख्यान से विशेष की प्रतिपत्ति होती है। प्रतिपत्ति का अर्थ क्या देखा, ज्ञान होता है। इस न्याय के अनुसार एक स्थिति विशेष में भवबद्ध शेष और समय प्रबद्ध शेष असंख्यात होते हैं, ऐसा यहाँ ग्रहण करना चाहिए। इस कारण एक स्थिति विशेष में एक समय प्रबद्ध संबंधी शेष कितने होते हैं वो पूछ रहे, एक समय प्रबद्ध संबंधी यानी कितने परमाणु हैं, एक निषेक में किसी एक स्थिति एक समय प्रबद्ध के शेष जो है कितने परमाणु हैं, तो कहते हैं जघन्य से एक परमाणु से लेकर उत्कृष्ट से अनंत परमाणु प्रमाण तक जो नियम से आगे के समय में खिरने वाले उपलब्ध होते हैं। एक निषेक की बात है, एक निषेक में एक समय प्रबद्ध के कितने परमाणु पड़े हैं, तो कहते मिनिमम एक परमाणु पड़ा है वो अपकर्षण होकर उदय में आने वाला है, या द्वितीय स्थिति में पड़ा है और वो नीचे का निषेक गल जाएगा तो उसका नंबर आएगा तो वो गल जाएगा। एक निषेक की बात चल रही है, पूरे सप्ताह में कितने है उसकी बात नहीं हो रही, अनंत तक, क्योंकि उसके पहले पहले सारे निकल गए हैं ना, अभी एक ही परमाणु है, कब का बंधा था किसी विशिष्ट समय प्रबद्ध का वो एक परमाणु है। इस प्रकार दो तीन आदि के क्रम से जाकर उत्कृष्ट से पल्लोपम के असंख्यात वे भाग प्रमाण समय प्रबद्धों के शेष जघन्य से एक परमाणु से लेकर उत्कृष्ट से अनंत परमाणु प्रमाण होकर उपलब्ध होते हैं। इसका अर्थ नियम से जो पाए जाते हैं उसकी बात है। पल्लोपम पल्ले के स्थिति की बात नहीं है, इतने काल पूर्व बंधे हुए समय प्रबंधों की बात। अभी उसकी उतनी स्थिति नहीं हुई अवेलेबल, परंतु वो कब के बंधे थे, कौन से समय प्रबद्ध के थे, एक समय प्रबद्ध कौन सा, एक समय पहले बंधा था, दो समय पहले बंधा था, तीन समय पहले बंधा था, तो ये कब बंधा था, कहते पल्ले के असंख्यात वे भाग पहले बंधा था। उत्कृष्ट से आगे वाला होगा ही है, ऐसी बात नहीं ना, उसका एक भी नहीं हो ये बात बन सकती है। ये तो कौन से शेष वहां अवेलेबल है उसकी बात चल रही है। ये अपनी ये बात कुछ हुई है हमारी जो प्रदेश विभक्ति के उस काल में, मुझे एग्जैक्ट उसका वर्डिंग नहीं याद है, अब इसको और पढ़ेंगे तो ख्याल आएगा मेरे भी। इसी प्रकार भवबद्ध शेषों का भी कथन करना चाहिए। भवबद्ध शेषों में क्या कहेंगे, एक भव में बंधे हुए यहाँ अवेलेबल है और अनेक भवों में बंधे हुए भी अवेलेबल है। कितने अनेक भव, तो असंख्यात भव। इस प्रकार यह गाथा के पूर्वार्ध संबंधी सूत्र का समुच्चय वो पढ़ते हैं। नियमानुभाग ऐसा कहने पर वे भवबद्ध शेष और समय प्रबद्ध शेष उसी स्थिति विशेष में निश्चय से अनंत भवभागों में पाए जाते हैं, अनंत अनुभागों में पाए जाते हैं। क्या कहा, वे भवबद्ध शेष और समय प्रबद्ध शेष उसी स्थिति विशेष में, उसी निषेक की बात है, एक निषेक की बात है। पहले एक निषेक में कितने भवबद्ध शेष है और कितने समय प्रबद्ध शेष है पूछा था, तो कितने समय प्रबद्ध, एक समय प्रबद्ध शेष में क्या लेना कि एक समय में बंधे हुए टोटल अनंत परमाणुओं में से कितने वहां मिनिमम है, तो कहते एक परमाणु, मैक्सिमम कितने, तो कहते अनंत। और फिर ऐसे कितने समय प्रबद्धों के, नाना समय प्रबद्धों के शेष है, तो असंख्यात पल्ले के असंख्यात वे भाग प्रमाण अलग अलग समयों में बंधे हुए उनके शेष यहाँ पड़े हैं, ये बात वहां थी। यानी इतने पहले के भी समय प्रबद्धों के परमाणु वहां है, ये बात आ गई ना, जगन्य से एक परमाणु से लेकर उत्कृष्ट अनंत तक हो गए। अब उसी स्थिति विशेष की बात है, उसी निषेक में अनुभाग की अपेक्षा बात करें, क्योंकि एक एक निषेक में अनुभाग के सभी अनंत भेद पड़े हैं। तो कहते उसी स्थिति विशेष में निश्चय से अनंत अनुभागों में पाए जाते हैं, क्योंकि जगन्य शक्ति रूप से परिणत एक भी परमाणु में अनुभाग संज्ञक अनंतानंत अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं। एक परमाणु में कैसे अनुभाग अनंत होते हैं, तो कहते हैं उसकी शक्ति कितनी, तो अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, उस अपेक्षा अनंत अनुभाग होते हैं। ऐसा कहा, अलग अलग अनंत अनुभाग अनंत परमाणु में होंगे, परंतु एक परमाणु किसी का है तो उसमें कितनी शक्ति है, मान लेते लाख है तो लाख भी बहु हो गए ना, उस अपेक्षा से मिनिमम भी है वो भी अनंत अनुभाग अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है, उस अपेक्षा से अनंतों में होते हैं। क्या क्या अपेक्षा लगाना। अब इस प्रकार इस गाथा के गाथा के अर्थ की विभाषा करते हुए आगे विभाषा ग्रंथ का कथन करते हैं। मेरे ख्याल से इसीलिए वो पहले में पहले इतने अनुभाग विभक्ति और प्रदेश विभक्ति इतना उन्होंने तीन तीन चार चार पुस्तकें उस पर बताई है। विभाषा, अब इस भाष्य गाथा की विभाषा करते हैं। गाथा सूत्र में निर्दिष्ट किए गए अर्थ का ब्योरेवार कथन करना यानी विस्तार से विभाषा कहलाते हैं। समय कथन करते हैं, यह उक्त कथन का तात्पर्य। उसमें सर्वप्रथम भवबद्ध शेष और समय प्रबद्ध शेष के स्वरूप विशेष का ज्ञान कराने के लिए पहले गाथा सूत्र द्वारा सूचित हुए उनके लक्षण का निर्देश करते हुए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। समय प्रबद्ध शेषयम नाम किम, ये ऊपर प्रश्न चिन्ह। समय प्रबद्ध शेष किसे कहते हैं? ये तो अभी तक हम शेष शेष की बात की, तो अभी यहाँ सूत्र में बता रहे हैं कि किसको कहेंगे। ऐसा पूछने वाले का यह अभिप्राय है कि समय प्रबद्ध शेष के प्रमाण का ज्ञान हो जाने पर बाद में उसका प्रमाण कितना है इत्यादि प्ररूपना घटित होती है, अन्यथा नहीं। इसलिए सर्वप्रथम उसी के स्वरूप का निर्देश करना चाहिए। समय प्रबद्ध शेष किसे कहना यही मालूम नहीं है तो वो कितने होते कहने से क्या फायदा, ये बात बता। उसके स्वरूप का निर्देश करने पर उस समय प्रबद्ध शेष का स्वरूप किस प्रकार का है, क्योंकि उसके स्वरूप को हम नहीं जानते। इसी प्रकार भवबद्ध शेष के विषय में भी पृच्छा का निर्देश करना चाहिए, यानी इसी में वो भी है ये गर्भित होता है, क्योंकि इस सूत्र की देशामर्शक रूप से प्रवृत्ति स्वीकार की गई है। यहाँ समय प्रबद्ध शेष क्या है ये पूछा है, उसका लक्षण, उसी में ये भी प्रश्न गर्भित जानना कि भवबद्ध शेष क्या है। अब इस पृच्छा का निर्णय का विधान करने के लिए आगे के सूत्र का अवतार करते हैं। ये सूत्रों में उसको उन्होंने बहुत विस्तार से समझाया। जम समय प्रबद्धस्य वेदिद शेषगम पदेशगम दिशई तम्नि अपरिशेषिदम्नि एक समयन उदयम आगदम्नि तस्य समय प्रबद्धस्य अन्नोकम पदेशो वानत्थि तम समय प्रबद्ध शेषगम नाम। समय प्रबद्ध का वेदन करने के बाद जो प्रदेश पुंज दिखलाई देता है, वेदन करने के बाद यानी अभी उदय में आकर खिल गए हैं, उसके बाद अभी जो समय प्रबद्ध का वहां शेष परमाणु पड़े हैं, पूरे उसके एक समय द्वारा उदय में आने पर जितना अभी सत्ता में पड़ा है वो पूरा का पूरा एक समय में उदय में आकर नष्ट होने वाला है। कहां लिखा नष्ट होने वाला है, तो कहते कि एक समय द्वारा उदय में आने पर उस समय प्रबुद्ध का फिर कोई अन्य कर्म प्रदेश उदय में आने के लिए शेष नहीं रहता, उसे समय प्रबुद्ध शेष कहते हैं। अभी तक क्या हुआ था, उस पर्टिकुलर समय प्रबुद्ध की बात, कोई समय प्रबुद्ध किसी पहले बांधा था, उसके बाकी परमाणु उदय में आकर सब खिल गए हैं, अभी नेक्स्ट समय में ही उसके उदय में आकर सभी के सभी खिर जाने वाले हैं, उसको समय प्रबद्ध शेष कहेंगे। एक समय में बंधे हुए कि जहाँ कहीं पर भी अभी वो सब उदय में आकर खिरने वाले, इसलिए दो अर्थ किए, एक तो उदयावली के उदय ने उदय के समय से दूसरा समय दिया है, या ऊपर उदयावली का कहीं भी पड़ा है और वो उदीरित होकर वहां उदय में आ, इसलिए दोनों ही अर्थ है। या तो अभी वर्तमान समय के छोड़कर दूसरे समय में पड़ा है जो नेक्स्ट समय में उदय में आने वाला है, या ऊपर कहीं पड़ा है जो नीचे उदीर्ण होकर उदय में आएगा। तो जो दिखाई दे रहा है कहीं पर भी है तो एक निषेक में कितना है क्या है वो पूछ रहे, तो यहाँ तो वो क्या है वो पहले बता रहे। ये सूत्र में फिर पढ़ूंगी। समय प्रबद्ध का वेदन करने के बाद जो प्रदेश कुंज दिखलाई देता है, पूरे उसके एक समय द्वारा उदय में आने पर, यानी जितना दिखाई दे रहा है वो पूरा का पूरा भी एक समय में उदय में आने वाला है, और फिर उसके पश्चात उस समय प्रबद्ध का फिर कोई अन्य कर्म प्रदेश शेष नहीं रहता, अभी उसको शेष कह रहे एक समय के लिए, बाद में कोई उसमें से नहीं रहने वाला है। वो अन्य समय प्रबुद्धों का है, हम पर्टिकुलर समय प्रबुद्ध की बात करें। हाँ, एक समय प्रबुद्ध में सारा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, जितनी सिटी बंदी, एक 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 समय करके उदय आतेगा। अभी तक अभी क्या हो रहा है, अभी नेक्स्ट समय में सारा का सारा नष्ट होने वाला है। वही तो, अभी जितने जहाँ कुछ पड़े हैं, दूसरे समय में वो उदय में आकर नष्ट होने वाले हैं। ऐसा जीव ले, ऐसा समय प्रबंध लिया। सत्ता में तो अलग अलग, किसी समय प्रबंध के बारे में ये लागू होगा ही ना, अनेक समय प्रबंधों के बारे में ये लागू होगा, अनेक समय प्रबंधन। वो एक समय वो बंधा हुआ एक समय साथ नहीं था, वो खिरने वाला एक समय प्रबंध। यहाँ बंधा जो बंधा था एक साथ उसकी बात है, खिरने वाले को कहा यहाँ एक समय प्रबंध आएगा, परंतु वो विशिष्ट किसी समय में बंधे हुए की बात है। हाँ, ऐसा ही लेना है कि वो अभी नष्ट होने वाले हैं। देखो ये सत्ता का है, ये सत्ता का है और ये किसी समय में बंधा हुआ है। वो तो बंद तो हर समय चल ही रहा है, तो उसमें कुछ स्थिति कांडक हुए, कुछ निकल गए और ऐसे करते करते अभी उदय में भी कुछ, अभी ये सारे इसके, क्योंकि वो पूर्व में बंधे थे ना। सत्ता में तो हर समय नए नए बंधने वाले चल रहे, वो एक विशिष्ट समय प्रबंध की बात है, तो उसके कुछ परमाणु यहाँ पर भी है और हो सकता है यहाँ पर भी, बाकी सारा नष्ट हो गया। तो ये समय प्रबंध शेष है, या इसके कुछ परमाणु यहाँ ऊपर है और वो सारे ही नेक्स्ट समय में उदय में आकर नष्ट होने वाले हैं। इसको समय प्रबंध शेष का, हाँ, एक विशिष्ट समय में बंधे हुए का माल कहाँ कहाँ पड़ा है वो अभी एक समय के लिए बाकी है खिरना। वो तो होता ही है, उसका भी एक ही समय बाकी रहे ऐसे, ऐसे एक विशिष्ट एक ही समय में बंधे हो सकते हैं या अलग अलग समय में बंधे हुए नाना समय प्रबंध के भी हो सकते हैं, जिनका एक समय ही अभी बाकी है सत्ता का, ऐसा जीव लेना या ऐसा समय प्रबंध लेना। जीव नहीं लेना, ऐसा समय प्रबंध लेना। आप कहेंगे हर एक समय के सभी एक साथ एक समय प्रबंध का ही उदय, ऐसा नहीं है। ये जो सत्ता का निषेक है उसमें तो असंख्यात अलग अलग समय प्रबंध के परमाणु पड़े और ये स्थिति कांडक आदि होते होते यहाँ तक आप पहुंचा है जी, तो कितने ही समय प्रबंधों में बंधे हुए वहां तो निकल गए, परंतु फिर भी नियम से कितने समय प्रबंध वहां पड़े रहेंगे उसकी बात यहाँ करें। एक ही निषेक में मान लेते एक ही परमाणु पड़ा है उसका, तो उसमें अनंत अनुभाग पाया जाता है ऐसा कहेंगे। अनंत अनुभागों में उसका अर्थ क्या है, अनंत ये जगन्य में भी अनंत अविभाग प्रतिच्छेद, इसलिए कहा अनंत अनुभागों में पाया जाता है।
एक समय में जितने बंदे थे वो कहाँ कहाँ पड़े हुए हैं,
वो कहाँ कहाँ पड़े ऐसा नहीं पूछा, वो अभी तक निकल गए उदय होकर वर्तमान में हो रहे, अब नेक्स्ट समय में जितने जहीं पर पड़े हैं वो सब उदय में आकर नष्ट होने, ऐसा पर्टिकुलर लिया है।
एक समय की बाकी रही,
एक स्थिति एक समय की, पर स्थिति एक समय की नहीं, जरूरी नहीं कि सभी इसी में है, हो सकता है ऊपर भी पड़ा है परंतु अभी नीचे उदय में आकर नष्ट होने वाला है।
ऊपर से नीचे आएंगे उनकी स्थिति अधिक है,
होने दो ना, परंतु उसका एक काल निर्लेपन काल एक समय का बाकी, क्योंकि उसकी उदीर्ण होकर वो फिरने वाला है विनेक समय, ऐसा ही समय प्रबद्ध है, उसको समय प्रबद्ध शेष कहा। हाँ हर एक के प्रमाण शेष का प्रमाण अलग होगा, एक समय एक परमाणु से लेकर अनंत परमाणु तक है शेष का प्रमाण। वो सब उसको शेष कहेंगे ही नहीं कहेंगे ऐसे नहीं, असंख्या समय प्रबद्ध की उदीरणा तो चलेगी, उदय चलेगा, परंतु उसको सभी को शेष नहीं कहेंगे। वो समय प्रबंध उनका किसी का पहला निषेक जा रहा है, किसी का दूसरा, किसी का तीसरा, उदय में आ रहे हैं। समय प्रबद्ध असंख्यात की उदीर्णा भी होती है और वो तो उदय में भी आएंगे, पर तो वो सभी को शेष कह नहीं सकते हम, क्योंकि कितने ही उनके बाकी निषेक बाकी है, अभी उनका माल बहुत पड़ा है। ये ऐसी कंडीशन है कि एक समय में वो नष्ट होने वाले, ये कंडीशन फिल होनी चाहिए। आगे पढ़ेंगे, देखो ये सूत्र फिर पढ़ते हैं। समय प्रबद्ध का वेदन करने के बाद, यानी एक समय प्रबद्ध में जो जितने परमाणु बंधे थे उनमें से अभी तक कितने ही परमाणु वेदन होकर निकल गए हैं, उसके बाद जो प्रदेश पुंज दिखलाई देता है, एक समय प्रबद्ध का जो रिमेनिंग प्रदेश पुंज है पूरे, उसके एक समय द्वारा उदय में आने पर, अब ये जो कितना दिखाई दे रहा है ना, उतना सारा का सारा एक समय में उदय में आने वाला है, यानी भी वर्तमान में नहीं, एक समय में उदय में आने वाला है। उसके पश्चात फिर कोई अन्य कर्म प्रदेश उदय में आने के लिए शेष नहीं रहता, उसको समय प्रबद्ध शेष कहा। यानी अभी इसकी कितना काल इसका बाकी है जीव के साथ सत्ता में, तो एक समय बाकी है। अब इस सूत्र के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हैं, जो कल ही देखना पड़ेगा शायद। क्या करना है, ये पैराग्राफ पढ़ती हूँ फिर कल उसके स्पष्टीकरण दोबारा पढ़ेंगे इसको, क्योंकि अभी जो हमने इतना उसमें पढ़ा है ना, थोड़ा जाएगा शायद सिर में। वह जैसे कर्म स्थिति के भीतर क्रम से वेदन किए जाने वाले समय प्रबद्ध का वेदन करने के बाद जो प्रदेश पुंज शेष रहकर तदनंतर समय में निर्लेपन के अभिमुख होकर दिखाई देता है, निर्लेपन ने भी खिरने वाला है, उसके अभिमुख ने भी वर्तमान में नहीं है परंतु वो एक समय के बाद खिरने वाला है, वह समय प्रबद्ध शेष कहलाता है, कहलाता है। अब इसी का विशेष रूप से कथन करने के लिए सूत्र में यह वचन कहा है, तम्मि अपरिशेषदम्मि उदयम आगदम्मि, अर्थात वेदन करने के बाद जो प्रदेश पुंज शेष रहता है पूरे उसका आकर्षण करके, उदय में निक्षिप्त करने पर तत्पश्चात उस विवक्षित कर्म समय प्रबद्ध का एक भी कर्म प्रदेश अथवा अन्य बहुत से कर्म प्रदेश प्रथम स्थिति में और द्वितीय स्थिति में नियम से नहीं पाए जाते, किंतु उसी प्रदेश कुंज के उदय होने के बाद उस समय प्रबद्ध का पूरा निर्लेपन हो गया, वह उस प्रकार का प्रदेश कुंज तदनंतर समय में उदय के अभिमुख होकर इस समय उपलब्धमान होता हुआ समय प्रबद्ध शेष कहलाता है, उक्त कथन का तात्पर्य। ख्याल में ये सारे कर्म परमाणु अभी वर्तमान में उदय रूप नहीं है, एक ही समय में उदय में आकर सारे के सारे निर्लेपित होने वाले हैं, सत्ता में से निकल जाने वाले हैं। ऐसे कर्म परमाणुओं की जो संख्या है उसको समय प्रबद्ध शेष कहा। अब इसकी और चर्चा कल दोबारा करेंगे। जावानी के ज्ञान ते सूझे।